फ्रेंड्स, हम सुन रहे हैं ओशो रेडियो में आकाशा युगा स्प्रिट एल्बम से लिए गए एक नंबर को।
Chapita Tame. आज के एपिसोड में डिस्कोर्स अथतो भक्ति जिज्ञासा वॉल्यूम नंबर 7 से लिया गया है, जिसमें ओशो हमें भक्ति से पराभक्ति की ओर ले चल रहे हैं।
प्राकयुक्तं च एतेन विकल्पोऽपि प्रत्युक्ता देवभक्तिरितरस्मिन् साहचर्यात् योगस्तु भयार्थम् अपेक्षणात् प्रयाजवत् गौण्या तु समाधि सीति।
भक्ति परम है, उसके पार कुछ और नहीं, भगवान भी नहीं। भक्ति है वह बिंदु जहां भक्त और भगवान का द्वैत समाप्त हो जाता है, जहां सब दुई मिट जाती, जहां दोपन एकपन में लीन हो जाता है। ऐसे एकपन में कि उसे एक भी कहें तो ठीक नहीं, क्योंकि जहां दो ही ना रहे वहां एक का भी क्या अर्थ। ऐसी शून्य दशा है भक्ति, या ऐसी पूर्ण दशा है भक्ति। नकार से कहो तो शून्य, विदेह से कहो तो पूर्ण, बात एक ही है, लेकिन भक्ति के पार और कुछ भी नहीं। जैसे बीज होता है, फिर बीज से अंकुर होता है, फिर अंकुर से वृक्ष होता है, फिर वृक्ष में फूल लगते हैं, और फिर फूल से गंध उड़ती, गंध है भक्ति। जीवन का अंतिम चरण जहां जीवन परिपूर्ण होता है, सुगंध, आखिरी घड़ी आ गई, इसके पार अब कुछ होने को नहीं, इसलिए सुगंध में संतोष है। न पार होने को कुछ है, न पार की आकांक्षा हो सकती। आकांक्षा करने वाला भी गया, आकांक्षा की जा सकती थी जिसकी, वह भी समाप्त हुआ। ऐसी निष्कांक्षा, ऐसी वासना शून्य, ऐसी रिक्त दशा है भक्ति। रिक्त अगर संसार की तरफ से देखें तो सारा संसार समाप्त हुआ, भरी पूरी लबालब। अगर उस तरफ से देखें, परमात्मा की तरफ से देखें, क्योंकि शून्य घट में ही परमात्मा का पूर्ण भर पाता है। सांडिल्य ने कहा, प्रागुक्तम चा, मैं जो कहता हूं नया नहीं है, ऐसा पूर्व में भी कहा गया है, सदा सदा कहा गया है। प्रागुक्तम चा का अर्थ होता है पूर्व में भी ऐसा ही कहा गया, जिन्होंने जाना उन्होंने भी ऐसा ही कहा है, जब भी जाना तभी ऐसा कहा गया है, भविष्य में भी जो जानेंगे ऐसा ही कहेंगे। अभिव्यक्तियां भिन्न होंगी, शब्द अलग होंगे, भाषाएं पृथक होंगी, पर जो कहा गया है सार में वह यही है। अज्ञानी एक जैसी बातें कहें तो भी बातें भिन्न भिन्न होती हैं, क्योंकि अज्ञान निजी है, वैयक्तिक है, सबका अलग अलग है। जैसे सपने सबके अलग अलग होते, झूठ सबके अलग अलग होते। सपना यानी झूठ, जो सपना तुमने देखा है वो दुनिया में कोई कभी नहीं देखेगा। तुम अपने सपने में किसी को निमंत्रण भी नहीं दे सकते कि आओ मेरा सपना देखो, बिल्कुल निजी है। अपने प्रीतम को भी नहीं बुला सकते, अपने निकटतम मित्र को भी नहीं कह सकते कि मेरे सपने में आज आ जाना, वहां बस तुम अकेले हो, पृथक, अस्तित्व से टूटे हुए, अपने में बंद। इसलिए तो सपना झूठ है, क्योंकि उसका कोई गवाह भी नहीं। तुम एक गवाह नहीं खोज सकते अपने सपने के लिए, इसलिए तो सपना झूठ है, क्योंकि उसका कोई साक्षी नहीं। जिस जगत में हम संगी साथी खोज लेते हैं वो ज्यादा सच है, इसलिए जो वृक्ष तुमने आंख खोल कर देखा है वो ज्यादा सच है, क्योंकि तुमने भी देखा, तुम्हारे पड़ोसी ने भी देखा, तुम्हारे मित्रों ने भी देखा, तुम्हारे शत्रुओं ने भी देखा। लेकिन जो सपने का वृक्ष है, आंख बंद करके तुमने देखा, बस तुमने देखा। शत्रुओं की तो बात दूर, मित्र भी उसे देख नहीं सकते। मित्रों की भी बात दूर, तुम भी उसे दोबारा देखना चाहो तो असमर्थ हो, तुम्हारे भी हाथ में नहीं है। एक तरंग थी झूठ की, तुम नींद में सोए थे, तुम इतने सोए थे कि झूठ को झूठ की तरह न देख पाए और सच मान लिया। नींद के कारण झूठ सच लगा। अज्ञानी की भाषा चाहे एक हो, चाहे उनके वक्तव्य एक हो, मगर वे अलग अलग बात कहती, अलग अलग ही कहेंगे, क्योंकि वे अलग अलग हैं। उन्होंने अभी एकात्म नहीं जाना, सर्व के साथ संबंध नहीं जाना, अभी सेतु ही नहीं बना, अभी सब अपने अपने में बंद, द्वार दरवाजे बंद किए बैठे। अज्ञानी एक सा भी बोले तो उनकी बात का अर्थ एक नहीं होता, हो ही नहीं सकता। ज्ञानी अलग अलग बोले, अलग अलग ही बोलते, फिर भी उनकी बात का अर्थ एक ही होता है। सांडिल्य कहते हैं प्रागुप्तम जा, ऐसा ही पहले भी कहा गया है, ऐसा ही आगे भी कहा जाएगा, ऐसा ही कहा जा सकता है। सत्य को अन्यथा कहने का उपाय नहीं है। फिर गीता कहे कि बाइबल की कुरान, जिनके पास आंख है वो गीता कुरान और बाइबल में एक की ही उद्घोषणा पाएंगे, एक ही ओंकार का नाद पाएंगे। कृष्ण का वचन है, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्म भाव प्राप्त करके जब मनुष्य प्रसन्नात्मा होता हुआ सब प्रकार की वासनाओं से मुक्त हो जाता है, उस समय सर्वभूत में समदर्शी होने पर वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। अर्थात समस्त साधनाओं का एकमात्र फल भक्ति है। जब सारी आकांक्षाएं गिर जाती, सारा सोच विचार शांत हो जाता है, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। ध्यान रखना, वासना है इसलिए विचार है। मेरे पास अनेक बार लोग आते हैं, वे कहते हैं विचार कैसे बंद करें। विचार बंद नहीं होगा जब तक वासना है, वासना है तो विचार उठता ही रहेगा। ऐसे ही जब तक वायु का प्रचंड वेग है झील पर लहरें उठती रहेंगी। लहरों को कैसे बंद करोगे? वायु का वेग रुके तो लहरें अपने आप शांत हो जाएंगी, बंद करनी भी नहीं पड़ेंगी। विचार तो तरंगे हैं वासना के वेग में उठी। तुमने देखा, चुपचाप बैठे हो, शांत बैठे हो, एक सुंदर स्त्री निकल गई और वासना उठी और तत्क्षण विचारों से गिर गए तुम। इधर आई वासना, उधर विचारों का प्रवाह आया, हजार हजार तरंगे आ गई। वासना का जरा सा कंकड़ गिर जाए तुम्हारी चेतना की झील में कि तरंग और तरंग और तरंग उठाती। चुपचाप बैठे थे, एक कार गुजर गई, मन में वासना उठी कि पाऊं, बस विचार का तांता शुरू हुआ, कतार बंधी। तुम अपने भीतर निरीक्षण करोगे तो इस सत्य को पकड़ पाओगे कि अगर विचार से मुक्त होना हो तो वासना से मुक्त होना पड़े। विचार वासना के पीछे आता है, अनुसंगी है, छाया है। कृष्ण कहते हैं जब कोई न सोचता है न वासना करता है तब प्रसन्नात्मा हो जाता है। सोचने वाला वासना और विचार में ग्रस्त हमेशा अवसन्न रहेगा, उदास, हारा थका, विषादग्रस्त, चिंतामग्न, संताप से भरा। क्यों? क्योंकि जितनी तुम्हारी वासना होगी उतनी ही तुम्हें अपनी दीनता अनुभव होगी। वासना तुम्हें बताएगी क्या क्या तुम्हारे पास नहीं, किस किस बात का अभाव है। जितनी ज्यादा वासनाएं होंगी उतना अभाव मालूम होगा। तुम उतने ही दरिद्र होते हो जितनी तुम्हारी वासनाएं होती, क्योंकि हर वासना खबर देती है कि ये मेरे पास नहीं। जिस दिन तक तुमने नहीं सोचा था कि एक बड़ा महल बनाऊं, उस दिन तक तुम महल में ही थे। तुम जहां भी थे महल था, झोपड़ा ही महल था। लेकिन जिस दिन ये वासना उठी कि एक बड़ा महल बनाऊं, उसी दिन से तुम झोपड़े में हो गए, क्योंकि अब उस महल की तुलना में ये झोपड़ा अखरता है, खटता है, काटता है। रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी, सुस्वादु थी। जिस दिन वासना उठी उसी दिन स्वाद खो गया, उसी दिन से तुम भूखे हो। अब पेट नहीं भरता सूखी रूखी रोटी से। स्वामी राम कहते थे कि मैं बादशाह हूं। किसी ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा इसीलिए कि मेरी कोई वासना नहीं। जितनी वासनाएं कम होती गई उतनी मेरी बादशाहत बढ़ती गई, और जिस दिन मेरी कोई वासना न रही उस दिन मैंने पाया कि मैं सबसे बड़ा बादशाह हूं, सम्राट हूं, शहंशाह हूं। क्योंकि जहां हूं वहां कोई अभाव नहीं है। अब अभाव पता ही चलता है वासना से। वासना की लकीर बड़ी होती जाती है, तुम्हारे जीवन की लकीर छोटी होती चली जाती। वासना की लकीर को मिटा दो और तुम पाओगे कि तुम प्रसन्नात्मा हो। कृष्ण कहते हैं जिसकी वासना गई, विचार गया, वो प्रसन्नात्मा हो जाता है, और जो प्रसन्नात्मा है वह ब्रह्मभूत होने में समर्थ हो जाता है। वो परमात्मा में लीन होने के करीब आ गया। अब बाधा ना रही, बाधा थी अभाव की, बाधा थी दीनता दरिद्रता की। मैं निरंतर तुमसे कहा हूं भिखारी की तरह से उसके द्वार पर मत जाना। जो भिखारी की तरह उसके द्वार पर गया है वो खाली हाथ लौटा है। खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ लौटोगे। तुमने ही अगर तय कर रखा है कि खाली हाथ रखने हैं तो परमात्मा भी तुम्हारे हाथ नहीं भर सकेगा। सम्राट की तरह जाना उसके द्वार पर, लेने और मांगने मत जाना, अपने को देने जाना। जिस दिन तुम्हारी प्रार्थना मांग नहीं होती, दान होती, उसी दिन पूरी हो जाती। जिस दिन तुम परमात्मा को देने को तत्पर होते हो उस दिन फिर कोई अभाव नहीं रह जाएगा। प्रसन्नात्मा दे सकता है, जो आनंद उल्लास से भरा है वही दे सकता है, जिसकी श्वास श्वास उत्सव हो गई है वही दे सकता है। जो प्रसन्नात्मा है उसमें और ब्रह्म में दूरी नहीं रह गई, पास आने लगा घर, नदी उतरने लगी सागर में, जल्दी ही लीन हो जाएगी, ब्रह्म भाव उपलब्ध होगा। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती समा सर्वेशु। और जिसको ब्रह्म भाव उपलब्ध हुआ वह सभी में अपने को पाएगा और सभी में समता पाएगा। पत्थर में भी अपने को पाएगा, फूल में भी अपने को पाएगा, अपने को विस्तीर्ण होता पाएगा, सारा अस्तित्व उसकी देह बन जाएगा। तुमने छोटी सी देह में अपने को बांध रखा है क्योंकि तुमने क्षुद्र वासनाओं में अपने को कस रखा है। जैसे जैसे वासना के बंधन गिरते हैं तुम विराट होने लगते हो। ऐसा नहीं है कि परमात्मा कहीं से आता है, सिर्फ तुम्हारे बंधन गिर जाते। तुम परमात्मा हो बंधे हुए, बंधन गिर जाते। अचानक अनुभव होता है कि जो मैं सदा से था वही हूं, सिर्फ भेद इतना पड़ा है, बंधन गिर गए। बुद्ध एक सुबह अपने भिक्षुओं के सामने आए और उन्होंने अपने हाथ में एक रूमाल ले रखा था और उन्होंने सबके सामने खड़े होकर उस रूमाल में 5 गांठें बांधी और फिर एक भिक्षु से पूछा कि क्या तुम कह सकते हो ये रुमाल वही है जैसा मैं लाया था या भिन्न हो गया। उस भिक्षु ने कहा, भगवान आप उलझन की बात पूछते हैं। सही उत्तर यही हो सकता है कि एक अर्थ में तो रुमाल वही है और एक अर्थ में रुमाल बदल गया। इस अर्थ में रुमाल वही है क्योंकि रुमाल में कुछ नया नहीं हुआ है, गांठ से कुछ नया नहीं हो गया। गांठ से क्या नया होगा, रुमाल बिल्कुल वही है। लेकिन फिर भी यह कहना ठीक नहीं कि बिल्कुल वही है, क्योंकि गांठ ने थोड़ा फर्क तो कर दिया। गांठ पहले नहीं थी, अब है। तुम गांठ लगे रुमाल हो, तुम गांठ लगे भगवान हो। गांठ खुल जाए, भगवान कहीं और से आता नहीं। ग्रंथि खुल जाए, ग्रंथियां विचार की हैं, वासना की हैं, उनके कारण अभाव, विषाद, संताप, उनके कारण नरक। जितना बड़ा तुम्हारा विषाद है उतनी परमात्मा से दूरी है। दुख में कोई परमात्मा से नहीं जुड़ पाता, और आदमी ऐसा मूढ़ है कि दुख में याद करता है, सुख में भूल जाता है। और दुख में कभी कोई नहीं जुड़ा, सुना ही नहीं, ऐसी घटना ही नहीं घटी कि दुख में कोई छलांग लगा गया हो परमात्मा में। दुख में तो तुम सुकड़ जाते हो, गांठ और मजबूत हो जाती, गांठ ही गांठ रह जाती, रुमाल बचता ही नहीं। पांच नहीं, पचास गांठ हो जाती कि हजार गांठ हो जाती, सारा रुमाल गांठों में दब जाता है, गांठों पर गांठें लग जाती, ग्रंथियों पर ग्रंथियां। पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है कि कभी ये रुमाल खुला भी था, कभी तुम मुक्त भी थे, कभी तुम निर्विकार भी थे, कभी तुम्हारी स्लेट पर कुछ भी ना लिखा था, शांति थी, कोई धब्बा ना पड़ा था। दुख में आदमी भगवान को याद करता है, और दुख सर्वाधिक दूरी है मनुष्य और भगवान के बीच। प्रसन्न आत्मा पहुंचता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, नाचो गाओ, रोते हुए मत जाओ, हंसते हुए जाओ। हंसते हुए ही कोई पहुंचता है, नाचते हुए जाओ। पहाड़ मत ढो चिंताओं के अपने सिर पर। अक्सर ऐसा हो जाता है, ये पहाड़ ढोने वाले लोग ही तुम्हें संत महात्मा मालूम होते, ये बहुत दूर है, इन्हें कुछ भी पता नहीं है। कहीं कोई मस्त होकर नाचता हो, चाहे परमात्मा की उसे याद भी ना हो, तो भी परमात्मा के करीब मस्ती में सार है। कहीं कोई रस निमग्न है, कहीं कोई डूबा है, सब भांति भूलकर वहीं समझना कि परमात्मा का द्वार करीब है। चूकना मत, वहां सत्संग करना। जहां मस्ती में डूबे हुए लोग मिल जाएं, जहां मस्तों की मधुशाला मिल जाए, वही मंदिर है। उस क्षण याद किया तो काम आ जाता है, क्योंकि उस वक्त हम बहुत करीब होते, जरा सी आवाज दी कि वहां तक पहुंच जाती। आनंद के पंखों पर चढ़कर ही प्रार्थनाएं परमात्मा तक पहुंचती। दुख तो पंख ही ने, पंख कटे जटायु सा, उस पर चढ़ के कोई यात्रा नहीं होती। जो ब्रह्मभूत हो गया, आनंद मग्न होकर सोच विचार वासना से मुक्त हुआ, उसे सब में एक ही का वास दिखाई पड़ने लगता है। समा सर्वेशु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। और इस अवस्था का नाम पराभक्ति है, भगवान ही भगवान, शैतान में भी भगवान, राम ही राम, रावण में भी राम। जिस क्षण भगवान के अतिरिक्त कुछ और दिखाई ही ना पड़े, चाहो तो भी दिखाई ना पड़े, खोजो तो भी ना पा सको, जहां उल्टो जिस पत्थर को पलटो वही मिल जाए, जिस लकड़ी को तोड़ो वही मिल जाए, आंख खोलो तो वही, आंख बंद करो तो वही, जिस दिन जहां जाओ वहीं काबा वहीं काशी, जिस दिन जहां झुको वहीं मंदिर, जहां बैठ रहो वहीं तीर्थ। कबीर ने कहा है, खाऊं पीऊं सो सेवा, उठूं बैठूं सो परिक्रमा, वही है। तो अब अलग से भोग लगाने की भगवान को जरूरत ना रही, तुमने जो खाया पिया वो भी उसी को भोग लग गया। खाऊं पीऊं सो सेवा, उठूं बैठूं सो परिक्रमा, उठता हूं बैठता हूं ये उसी की परिक्रमा चल रही, ये श्वास उसी की परिक्रमा है, आती जाती श्वास, ये आती जाती श्वास उसी का निनाद है, ये आती जाती श्वास उसी का ओंकार है, ये उसी का भजन है। इस परम दशा को कृष्ण ने भक्ति कहा है। ठीक कहते हैं सांडिल्य, प्रागुक्तम चाह, पूर्व में भी ऐसा ही कहा गया है। और दूसरे भक्ति के तत्वज्ञ नारद ने कहा है, ओम फल रूपत्वात, वह भक्ति सब साधनों का फल रूप है, अंतिम है, पराकाष्ठा है, उसके पार और कुछ भी नहीं। से सब रूप साधनाओं के उसी तरफ ले जाते, से सब मार्ग हैं, साधन हैं, भक्ति साध्य है। एतेन विकल्पो अपि प्रतियुक्ता, इससे विकल्प का नाश भी हो गया। साधारणतः इस वचन का अर्थ किया जाता है कि चूंकि शास्त्रों में भी ऐसा कहा है, आप पुरुषों ने भी ऐसा कहा है, जानने वालों के ऐसे ही वचन हैं, इसलिए अब कोई संदेह की बात न रही, अब सब विकल्प समाप्त हो गए, अब श्रद्धा की जा सकती है। मैं इतने से अर्थ से राजी नहीं होऊंगा, यह अर्थ ठीक है पर बहुत ऊपर ऊपर है, क्योंकि सांडिल्य जैसा ज्ञानी सिर्फ शास्त्रों का उल्लेख करके ऐसा नहीं कह सकता कि सब विकल्प समाप्त हो गए। सब विकल्प तो समाप्त होते हैं तभी जब अनुभव हो जाए, शास्त्रों से कैसे विकल्प समाप्त हो जाएंगे। और सांडिल्य तो ऐसा कह ही नहीं सकते, क्योंकि अभी अभी तो हमने देखे उनके और सूत्र जिनमें उन्होंने ज्ञान की व्यर्थता कही, जिनमें उन्होंने कहा कि ज्ञान कचरा है, ज्ञान से कोई भक्ति तक नहीं पहुंचता। कृष्ण ने क्या कहा गीता में और नारद ने क्या कहा भक्ति सूत्रों में, इसको जानने से कोई शांति होगी, विकल्प समाप्त होंगे, इसके जानने से समाधान होगा। समाधि के बिना कोई समाधान न हुआ है, कभी न हो सकता है। शास्त्र कहते रहे कितना ही, जब तक तुम्हारा अंतर शास्त्र न जाग उठे तब तक सब विश्वास है, श्रद्धा नहीं, और विश्वास झूठी श्रद्धा का नाम है। तुम मान लो कि कृष्ण ने कहा तो ठीक ही कहा होगा, लेकिन पहले तो तुम्हें यह मानना पड़ता है कि कृष्ण ठीक है, फिर तुम्हें यह मानना पड़ता है कि जब ठीक व्यक्ति ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा, मगर सारी बात अंधी है। तुम्हें कैसे पक्का पता हो कि कृष्ण ठीक है? सांडिल्य कहते हैं इसलिए कृष्ण ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि फिर यह पक्का होना चाहिए कि सांडिल्य ठीक है। तुम रुकोगे कहां? तुम किस जगह से शुरू करोगे? जहां से भी शुरू करोगे वहीं से अंधापन होगा। तुम कहोगे परंपरा कहती, लेकिन परंपरा गलत हो सकती, कहीं भ्रांति हो गई हो, कहीं भूल हो गई हो। जब तक तुम्हारा अंतर अनुभव गवाही न दे, तब तक दुनिया की कोई चीज प्रमाण नहीं बन सकती। हाँ, मान ले सकते हो, सांत्वना होगी, थोड़ी राहत मिलेगी, मगर राहत और सत्य एक ही नहीं। अक्सर तो ऐसा हो जाता है, जो आदमी राहत पाने का बहुत आदी हो जाता है वो सत्य से सदा के लिए वंचित रह जाता है, क्योंकि वो व्यर्थ की बातों में ही राहत कर लेता है। सत्य सुविधा नहीं है, राहत नहीं है, अपने को समझा बुझा लेना नहीं है। सत्य अनुभव है, और अनुभव में जलना पड़ता है। सत्य अग्नि है, सत्य बहुत आग्नेय है, तुम्हें जलाएगा, निखारेगा, तभी तुम कुंदन बनोगे, तभी तुम्हारा सोना शुद्ध होगा। मान लेने से यह नहीं हो सकता, मानने के कारण ही तो इतने लोग भटके हुए। मानते तो सभी, कोई कृष्ण को, कोई क्राइस्ट को, कोई मोहम्मद को, कोई महावीर को, मानते तो सभी। फिर जो मोहम्मद को मानता है वो महावीर को नहीं मान सकता, जो महावीर को मानता है वो मोहम्मद को नहीं मान सकता। फिर इनमें से कौन आप्त पुरुष है? महावीर को मानने वाला मोहम्मद के मानने वाले के मन में संदेह तो पैदा कराएगा ही, कौन आप्त पुरुष है? आखिर कुछ लोग हैं जो महावीर को मानते हैं, कुछ लोग जो मोहम्मद को मानते हैं, कुछ लोग जो क्राइस्ट को, कुछ लोग जो कृष्ण को, इनमें कौन सच है? इस तरह की श्रद्धा विकल्पों से मुक्ति नहीं ला सकती। इसलिए जिन्होंने सांडिल्य के सूत्र एतेन विकल्पो अपि प्रतियुक्ता, इससे विकल्प का नाश हो गया, इसका ऐसा अर्थ किया है कि चूंकि सत पुरुषों ने कहा है, चूंकि सत शास्त्र दोहराते, इसलिए अब कोई संदेह का कारण नहीं रहा। ऐसा अर्थ मैं नहीं करना चाहूंगा, इतनी आसानी से संदेह नहीं मिटते, संदेह बड़े गहरे। सच तो यह है कि स्वयं परमात्मा भी तुम्हारे सामने खड़ा हो तो भी संदेह नहीं मिटते, जब तक कि परमात्मा तुम्हारे भीतर खड़ा ना हो जाए। उतनी दूरी भी रहे कि वो सामने खड़ा है, उतना भी फासला रहे, हाथ भर का फासला, तो भी संदेह उठते ही चले जाते। पता नहीं धोखा हो, पता नहीं कोई चालबाज हो, पता नहीं कोई माया हो, पता नहीं मैं कोई सपना देख रहा हूं, कल्पना कर ली है। भरोसा कैसे आए? भरोसा स्वानुभव से ही आता है, स्वानुभव ही श्रद्धा है। तो मैं इसका क्या अर्थ करूं? मैं इसका अर्थ करना चाहूंगा कि जहां न भक्त बचता न भगवान, ऐसी पराभक्ति में विकल्प समाप्त होते हैं। एतेन विकल्पो अपि प्रतियुक्ता, उस पराभक्ति में जाके विकल्प समाप्त हो जाते। जहां तुम्हारे सब विकल्प समाप्त हो जाएं, समझना कि पराभक्ति आई, जहां कोई विकल्प ना बचे। जब तक दो हैं तब तक विकल्प रहेंगे, जब तक मैं हूं और तू है तब तक विकल्प रहेंगे, तब तक संघर्ष चलेगा। जब एक ही बचता है, न मैं न तू, जब वह बचता है तत्, तब विकल्प बचने की कोई जगह न रही। अब विकल्प किसमें उठेंगे? न भक्त है न भगवान है, भगवत्ता रही। उस भगवत्ता में, उस पराभक्ति में, उस परम अवस्था में जहां बीज गया, वृक्ष गया, फूल गया, सिर्फ सुगंध रही, अदृश्य सुगंध, वहीं जाके विकल्प शांत होते।
अभी सुना गया द अनस्पोकन नंबर देवाकांत की एल्बम से है और लास्ट नंबर मिला रेपा की एल्बम सॉन्ग्स ऑफ अवेकनिंग से लिया गया है। साथ ही एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपके एरिया के आसपास कहीं भी ओशो मेडिटेशन रिट्रीट हो रही हो तो ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए। ओशो रेडियो के एक नए एपिसोड तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
दो तरह की भक्तियां सांडिल ने कही हैं, गौणी भक्ति और पराभक्ति। गौणी भक्ति का अर्थ होता है अभी भक्त मौजूद है, भगवान मौजूद है, दोनों आमने सामने खड़े, रस बह रहा है, अपूर्व आनंद है, मस्ती बंधी है, लौ से लौ मिल गई है, मगर अभी द्वैत कायम है। गौणी भक्ति। पराभक्ति का अर्थ है भगवान भक्त में खो गया, भक्त भगवान में खो गया, अब दो नहीं। पहली जो गौणी भक्ति है उससे जो समाधि मिलती है, पतंजलि का शब्द उपयोग करें तो उसका नाम है सबीज समाधि। और जो पराभक्ति है उसके लिए पतंजलि का शब्द उपयोग करें तो उसका नाम है निर्बीज समाधि। सबीज समाधि में बीज अभी कायम है, वृक्ष खो गया लेकिन बीज अभी कायम है, मौका पाके बीज से फिर वृक्ष पैदा हो सकता है। गौणी भक्ति से जो समाधि मिलती है वो खो सकती है। तुम भगवान के सामने खड़े हो लेकिन अभी दूरी है, चाहे इंच भर की दूरी हो मगर दूरी है, और जो इंच भर की दूरी है वो मील की दूरी हो सकती है, योजनों की दूरी हो सकती है, फिर दूरी बढ़ सकती है, फिर भेद पैदा हो सकता है, फिर भटकाव हो सकता है। अभी बीज कायम है, द्वैत कायम है, तो या तो उसे सबीज समाधि कहें, अभी गिरना हो सकता है, या सविकल्प समाधि कहें, अभी विचार कायम है, अनुभव हो रहा है कि आनंद आ रहा है, मैं हूं और मुझे आनंद आ रहा है। जब तक तुम्हें ऐसा लगे कि आनंद आ रहा है तब तक समझना गौणी भक्ति, छोटी समाधि, अभी अनुभव करने वाला शेष है। फिर अंतिम चरण में होती है पराभक्ति, बीज भी मिट गया, बीज दग्ध हो गया, अब कभी लौटना ना हो सकेगा, अब कोई वापसी नहीं होगी, संसार समाप्त हुआ, अब अनुभव भी नहीं हो सकता कि मैं आनंद में हूं, मैं ही नहीं हूं, आनंद ही आनंद है। इसलिए गौणी भक्ति से तो अनुभव होता है, पराभक्ति में अनुभव नहीं होता। कृष्णमूर्ति ठीक कहते हैं कि वो जो परम दशा है उसको अनुभव नहीं कहा जा सकता, उसे ज्ञान भी नहीं कहा जा सकता, उसे दर्शन भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दर्शन ज्ञान अनुभव सभी में दो की अपेक्षा है, जानने वाला अलग होता है जाना जाने वाले से, ज्ञे अलग होता है ज्ञाता से, दृष्टा अलग होता है दृश्य से। उस परम दशा में दृष्टा और दृश्य एक है, वह पराभक्ति, वह निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि, वही लक्ष्य है। गौणी भक्ति से समाधि की सिद्धि हो सकती है लेकिन उससे तृप्त मत हो जाना, उससे भी पार जाना है, ऐसी जगह जाना है जिसके पार और जाना ना रहे, उस स्थिति को पाना है जिसके पार और कोई स्थिति नहीं है। फूल ही बन के समाप्त मत हो जाना, फूल यानी गौणी भक्ति, अभी आकार है, अभी रूप है, अभी रंग है, सुवास हो के समाप्त होना, सुवास मुक्त हो गई आकार से रूप से रंग से, सुवास आकाश में लीन हो गई, सुवास आकाश हो गई। उसे सांडिल्य ने पराभक्ति कहा है। गौणी भक्ति में भक्त और भगवान होते हैं और भक्ति होती है। पराभक्ति में न कोई भक्त होता न कोई भगवान होता, बस भक्ति होती, भगवत्ता होती। ऐसे ये अपूर्व सूत्र हैं। सांडिल्य को सुन के तुम में प्यास जगे, इसलिए इन सूत्रों की व्याख्या कर रहा हूं। ज्ञान न जमा लेना, ज्ञान जमा लिया चूक गए, प्यास जगाना, तुम्हारे भीतर गहन आकांक्षा उठे, अभीप्सा जगे, एक लपट बन जाए कि पा कर रहूं, कि इस अनुभव को जान कर रहूं, कि इस अनुभव को जाने बिना जीवन अकारत है। ऐसी ज्वलंत आग तुम्हारे भीतर पैदा हो जाए तो दूर नहीं है गंतव्य। उसी आग में अहंकार जल जाता है, उसी आग में बीज दग्ध हो जाता है, और तुम्हारे भीतर जन्मों जन्मों से छिपी हुई सुवास मुक्त आकाश में विलीन हो जाती। उसे मोक्ष कहो, निर्वाण कहो, जो नाम देना चाहो दो। उसका कोई नाम नहीं है, लाओसु ठीक कहता है, उसका कोई नाम नहीं है, काम चलाने को ताओ कहता हूं। आज इतना।
Master, going deeper and